Devaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. स्वयं पढ़ रहे श्रीमद भागवतम स्कंद 8 अध्याय 5 अध्याय का नाम देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए श्री भगवान से याचना। श्लोक क्रमांक 30 मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। अयम च तस्य स्थिति पालन शनः सत्वम जुषानस्य भवाय देहिनाम तस्माद् व्रजामः शरणं जगद्गुरुम् स्वानां सनोधाशति संसुर प्रियः अयं च तस्य स्थिति पालनशनः सत्वं जुषानस्य भवाय देहिनाम् तस्माद् व्रजामः शरणं जगद्गुरुम् स्वानां सनोधाशति संसुरप्रियः अयं च तस्य स्थितिपालनशनः सत्वं जुषानस्य भवाय देहिनाम् तस्माद् व्रजामः शरणं जगद्गुरुम् स्वानां सनोधाशति संसुरप्रियः। माताजी तस्य स्थिति पालन लक्षण शब्दार्थ अयम यवधि च भी तस्य पुनः पुरुषोत्तम भगवान की स्थिति पालन शन पालन या अपना शासन स्थापित करने का समय सत्वम सत्वगुण जुषानस्य अभी बिना प्रतीक्षा किए स्वीकार करते हुए भवाय अधिक उन्नति के लिए देहिनाम भौतिक शरीरधारियों का तस्मात् इसलिए व्रजमाह जाना चाहिए शरणम शरण में जगत गुरुम श्री भगवान के चरण कमलों पर जो संसार भर के गुरु है स्वानम हमारा अपना सह वे श्री भगवान नाह हमको धाश्यति देंगे क्षमा आवश्यक सौभाग्य सूर प्रियः देवताओं को स्वभावतः अत्यंत प्रिय अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की बहुत बड़ा तात्पर्य है मगर बहुत महत्वपूर्ण भी है हमारे लिए हमें ध्यान से सुनना चाहिए और पढ़ भी सकते हैं अनुवाद भौतिक देह धारण करने वाले जीवों के सत्व गुण का आह्वान करने का यही अवसर है सत्वगुण श्री भगवान के शासन की स्थापना करने के निमित्त होता है जो सृष्टि के अस्तित्व का पालन करेगा अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए यह उपयुक्त समय है क्योंकि वे देवताओं पर स्वभावतः अत्यंत दयालु है और उन्हें प्रिय है अतएव वे हमें निश्चय ही सौभाग्य प्रदान करेंगे तात्पर्य भौतिक जगत का संचालन प्रकृति के तीन गुणों से होता है ये है सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण रजोगुण से भौतिक वस्तुओं का सृजन होता है सत्वगुण से उनका ठीक से पालन होता है और जब सृष्टि ठीक से स्थित नहीं रहती तो तमोगुण से उनका विनाश हो जाता है इस श्लोक से हम कलयुग की स्थिति समझ सकते हैं जिसमें से इस समय हम गुजर रहे हैं कलयुग के प्रारंभ में या यो कहे कि द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और श्रीमद् भगवत गीता के रूप में अपने उपदेश छोड़कर गए जिसमें उन्होंने सभी जीवों को उनकी शरण में आने के लिए कहा है किंतु कलयुग के प्रारंभ से ही लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण नहीं कर पा रहे हैं अतएव लगभग 5000 वर्ष के बाद भगवान श्री कृष्ण पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में सारे विश्व को यह सिखाने के लिए आए कि भगवान श्री कृष्ण की शरण कैसे ग्रहण की जाए और किस तरह शुद्ध हुआ जाए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का अर्थ है पूर्ण शुद्धि प्राप्त करना श्री भगवत गीता 18.66 में श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः तुम विविध प्रकार के सारे धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें सारे पापों के फल से बचा लूंगा तुम डरो मत इस तरह जैसे ही कोई श्री भगवान कृष्ण के शरण कमलों की शरण में जाता है त्यों ही वह निश्चित रूप से समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है कलयुग कलमश से भरा है इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है कलेर दोष निधि राजन अस्ति है एको महान गुनाह कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संघ परम व्रजेत यह कलयुग अनंत दोषों से भरा है निसंदेह ये दोषों के सागर दोष निधि के समान है किंतु इसमें एक ऐसा अवसर भी है कीर्तनाद एवं कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके मनुष्य कलियुग के कलमस से छूट सकता है और वह अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में भगवत धाम को लौट सकता है। कलियुग का यह शुभ अवसर है। जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने आदेश दिए और जब कृष्ण भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं प्रकट हुए तो उन्होंने हमें वह मार्ग दिखलाया जिससे कलियुग के सागर को पार किया जा सके। वह मार्ग है हरे कृष्ण आंदोलन का मार्ग। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो उन्होंने संकीर्तन आंदोलन के युग का सूत्रपात किया। यह भी कहा जा सकता है कि यह युग 10,000 वर्षों तक रहेगा। इसका अर्थ यह होता है कि संकीर्तन आंदोलन को स्वीकार करने तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से इस कलियुग के पतित आत्माओं का उद्धार हो जाएगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध जिसमें श्री भगवत गीता का प्रवचन हुआ था उसके पश्चात कलियुग को 4,32,000 वर्षों तक रहना है जिसमें से केवल 5,000 वर्ष बीते हैं। इस प्रकार अभी भी 4,27,000 वर्ष शेष है। इनमें से अगले 10,000 वर्षों तक श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा 500 वर्ष पूर्व उद्घाटित संकीर्तन आंदोलन कलियुग के पतित आत्माओं को कृष्ण भावना अमृत आंदोलन स्वीकार करने, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने एवं भौतिक अस्तित्व के पास से छूटकर भगवत धाम वापस जाने का सु अवसर प्राप्त होता रहेगा। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सदैव सक्षम रहा है किंतु कलियुग के लिए विशेषतया शक्तिमान है। अतएव महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन पर बल दिया है। फिर से वही श्लोक, कले दोष निदे राजन अस्ति है एको महान गुणान कीर्तनाद एव कृष्ण से मुक्त संघ परम व्रजेत। हे राजन, यद्यपि यह कलयुग दोषों से भरा है किंतु फिर भी इस युग का एक उत्तम गुण है। वह गुण है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से ही मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्त है और दिव्य लोक को जा सकता है। जिन लोगों ने पूर्णतया कृष्ण भावना अमृत में रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का प्रसार करने के का कार्य स्वीकार किया है उन्हें लोगों को भव बंधन से आसानी से उबारने के इस सु अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अतएव यह हमारा कर्तव्य है कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का अनुगमन करें और निष्ठापूर्वक सारे विश्व में कृष्ण भावना अमृत आंदोलन कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। मानव समाज की शांति तथा समृद्धि के लिए यह सर्वोत्तम कल्याण कार्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन श्री कृष्ण संकीर्तन के प्रसार में निहित है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। यह इतना यशस्वी क्यों है इसका भी व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु ने की है। चेतो दर्पण मार्जनम, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से मनुष्य का हृदय स्वच्छ होता है। सारी कठिनाई तो यह है कि इस कलयुग में सत्व गुण नहीं रह गया है और लोगों के हृदय स्वच्छ नहीं है। अतएव लोग अपने शरीर को ही आत्मा मानने की भूल कर रहे हैं। यहां तक कि बड़े बड़े विचारक तथा विज्ञानी भी जिस दिन से हमारा संपर्क होता है इस विचार के है कि वे शरीर है। अभी उसी दिन हम एक प्रमुख विचारक थॉमस हक्सली से विचार विमर्श कर रहे थे जिन्हें अंग्रेज होने का गर्व था। इसका अर्थ यह हुआ कि उनमें देहात्म बुद्धि थी। यह भ्रम हमें सर्वत्र मिलता है। मनुष्य में देहात्म बुद्धि के आने पर वह बिल्ली या कुत्ते जैसा पशु बन जाता है। स एव गोखरः, इस प्रकार हमारे हृदयों में जो सबसे गंदी वस्तुएं हैं उनमें से सबसे अधिक खतरनाक बात शरीर को ही आत्मा मानना की भ्रांत धारणा है। इस भ्रांति में आकर मनुष्य सोचता है मैं ये शरीर हूं, मैं अंग्रेज हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमरीकी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं। यही भ्रांत धारणा सबसे बड़ा अवरोध है और इससे हटाना होगा। श्री भगवत गीता का और श्री चैतन्य महाप्रभु का यही आदेश है। निसंदेह श्रीमद भगवत गीता का शुभ आरंभ ही इस आदेश से होता है। देहोस्मिन यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमुह्यति। जिस प्रकार देहधारी आत्मा इस शरीर में निरंतर बचपन से युवा अवस्था और फिर बुढ़ापे में चलता रहता है उसी तरह आत्मा मृत्यु के समय दूसरे शरीर में चला जाता है। किंतु इस परिवर्तन से अनुभूति प्राप्त सिद्ध आत्मा विचलित नहीं होता है। यद्यपि आत्मा शरीर के भीतर रहता है, लेकिन भ्रांति एवं पशु प्रवृत्ति के कारण मनुष्य शरीर को ही आत्मा मान बैठता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है, चेतो दर्पण मार्जनम, भ्रांतियों से भरे हृदय को पूरी तरह स्वच्छ करना मात्र श्री कृष्ण संकीर्तन के माध्यम से संभव है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के अंग्रेणी लोगों को इस सु अवसर पर गंभीरता से विचार करके पतित आत्माओं पर दयालु बनकर उन्हें भौतिक जीवन की भ्रांतियों से उभारना चाहिए। मनुष्य इस भौतिक संसार में किसी भी तरह से सुखी नहीं हो सकता, जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, अभ्रम भुवना लोक पुनर्अवतारिणो अर्जुन। इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से निम्नतम लोक तक सभी दुख के स्थान है, जहां बारंबार जन्म तथा मृत्यु होते रहते हैं। अतएव चंद्रमा तक जाने की कौन कहे, यदि कोई सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक भी चला जाए तो भी इस भौतिक जगत में कहीं सुख नहीं है। यदि कोई सचमुच सुख चाहता है तो उसे वैकुंठ लोक जाना चाहिए। भौतिक जगत जीवन टिकाए रखने के संघर्ष के लिए जाना जाता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और योग्यतम की उत्तर जीविता सुप्रसिद्ध सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इंग्लिश में कहेंगे। किंतु इस भौतिक जगत के बेचारे लोग ये नहीं जानते कि उत्तर जीविता क्या है और सक्षम कौन है। उत्तर जीविता का अर्थ यह नहीं होता कि कोई मर जाए, इसका अर्थ यह है कि वह मरे नहीं, अपितु ज्ञान के शाश्वत आनंदमय जीवन का भोग करे, यह उत्तर जीविता है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन हर व्यक्ति को उत्तर जीविता के लिए सक्षम बनाने के लिए निमित्त है। वास्तव में यह जीवन संघर्ष को रोकने के निमित्त है। श्री भागवतम तथा श्रीमद् भगवत गीता जीवन संघर्ष को रोकने के लिए निश्चित आदेश देते हैं और बताते हैं कि शाश्वत जीवन में इस प्रकार उत्तरजीवी बन जाए। अतः संकीर्तन आंदोलन एक महान अवसर है। मात्र श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करने से एवं हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करने से मनुष्य पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। इस तरह जीवन संघर्ष का अंत हो जाता है और मनुष्य भगवत धाम को वापस जाता है। श्रील प्रभुपाद की ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजना शलाखया चक्षुर उन्मिलितम येना तस्मय श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येना भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्वपदांतिकम। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सह गणा रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सह गणा ललिता श्री विशाखान्वितम श नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरति विषय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांटा राधा कांटा नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभय एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सो बहुत ही बड़ा और सुंदर प्रबोध का तात्पर्य है। तो इंटरेस्टिंग है, प्रबोध भागवतम में एक वैज्ञानिक का नाम लेते हैं, थॉमस हग्जली। तो बहुत ही मतलब भागवतम में उसका नाम हुआ है, मतलब लकी सोल है। सो थॉमस हग्जली एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट एक थिंकर थे जो डार्विन थ्योरी फॉलो करते थे और उनका पूरा विश्वास था कि हम ये शरीर है। तो प्रभु जी का कहना यह था कि इतना ज्ञानी होने के बाद भी सब वही समझते हैं कि मैं ये शरीर हूं, क्योंकि पशु भी यही समझते हैं कि मैं ये शरीर हूं, तो क्या फायदा ज्ञान का अगर आप शरीर खुद को समझ रहे तो। ये हक्सली कहते थे कि मैं एक बार विदेश में गया था, मतलब इंडिया में आए थे, और मैं देखता था कि ये जो लोग हैं यहाँ के संत महात्मा, ये कहते हैं कि ये माया बहुत प्रबल है, महाबोध प्रबल है, ये भगवान का शरण लेने से हमारा उद्धार हो सकता है। तो सही थे। हक्सली कहना था हम ब्रिटिशर ऐसे नहीं है, हम आखिर तक लड़ेंगे माया से, मैं कभी भी हार नहीं मानेंगे। प्रभा जी कहते हैं, भैया तुम ब्रिटिशर हो, फ्रेंचमैन हो, कोई भी हो, आखिर में माया आएगी, लात मारेगी और तुम्हें हार मानना पड़ेगा, तुम कोई भी हो। तो ये जो देहात्म बुद्धि है बहुत प्रबल है हमारे अंदर, और हम, और ये किसके कारण है? तमोगुण के कारण, अज्ञानता के कारण। और तमोगुण की वजह से हम जो असलियत है उससे बिरेफ्ट रहते हैं, वो हम, हमारे सामने आता ही नहीं है। और हमेशा हम इस शरीर या देहात्म बुद्धि के होने की वजह से इसके लिए सब कुछ मांगते हैं। प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते हैं, एक बुजुर्ग महिला जंगल जाती थी लकड़ी काटने के लिए, ब्रांचेस काटने के लिए, उसको बेचती थी। इसी तरीके से वो अपने घर को पालन करती थी, घर चलाती थी। तो एक बार वो बूढ़ी हो गई थी, थक गई थी, फिर भी सर पे पूरा लेके आ रही थी वजन, बोझा। बुढ़ापे की वजह से थोड़ा कमजोरी भी आ गया तो गिर गई और जोर से पुकारती है, हे गोविंद मेरी मदद करो। जैसे पुकारती है, गोविंद जी सामने आ जाते हैं कि पूरे मन से पुकारती है, और मन से पुकारती है और फिर कहती है, भगवान कहते हैं कि अपने पुकारा है, अब क्या चाहिए? तो कहती है, ये बोझ गिर गया है, वापस मेरे सर पे डालो, वापस मेरे सर पे डालो। सो हमें पता नहीं है कि जब भगवान भी हमारे सामने आते हैं हमें उनसे क्या मांगना चाहिए। हम मांगते कि बोझ दो, क्यों? देहात्म बुद्धि। ये देहात्म बुद्धि की वजह से हमें लगता है कि ये हमारा भला करेगा। अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में आया था, नहीं कि आपने सुना रहेगा, थाई में कहीं पे गुफा में बहुत सारे बच्चे फंस गए थे जो सब फुटबॉल खेलते थे, तो उसमें से एक ने दम तोड़ दिया विदेश में, यूके में जाके। सो सब प्रे कर रहे हैं कि बेचारा स्वर्ग में जाके फुटबॉल खेल रहा रहेगा, ये प्रार्थना करते हैं। तो भने इंटेंशन बहुत अच्छा है कि खुश रहे, फुटबॉल खेल के इस तरीके से कोई खुश रहेगा? सो इंटेंशन अच्छा होने से कुछ होने नहीं वाला है, आपको ज्ञान भी होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ना भगवद गीता में, द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशन, कि जो नर का रास्ता है अच्छी धारणा से, ये सुन लेंगे अच्छी, हाँ अच्छा हो, भला हो, ये धारणा से होता है, मगर फिर भी नर की तरफ जाता है, क्यों? अज्ञानता के कारण। सो हमें अज्ञानता से मुक्त होना है और हमें सही चीज मांगनी है, जो कि यहां पे ये भागवत में दिया गया है। जब गजेंद्र, हम इसके पहले के अध्याय में गजेंद्र की लीला थी, जो फंस गया था किसके चंगुल में? मगरमच्छ के। और फंसा हुआ तो उसे निकल नहीं रहा था, उसका दम टूटने वाला था, मर रहा था। और फिर उसे क्या करता है, वो प्रार्थना करता है कि भगवान मेरी रक्षा करो। सो प्रार्थना करता है, भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। तो जब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी रक्षा के लिए आते हैं, और अभी भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। देखा जाए तो हम द्रौपदी तो नहीं है कि हे गोविंद पुकारा और भगवान हमारे सामने आ जाए, तो भगवान कैसे हमारी रक्षा कर रहे हैं? फिर कैसे समझ सकते हैं, खुद नहीं आ रहे तो कैसे रक्षा कर रहे हैं? वो हमारी रक्षा कर रहे हैं भक्तों के जरिए, जो आपको मारते हैं और कहते हैं माया में हो, वो आपको कहते हैं सेवा करो। तो ये तरीके से भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, भक्तों के जरिए, ये ग्रंथ के जरिए अज्ञानता निकालने के लिए, हरे कृष्ण मंत्र के जरिए, ये सब फैसिलिटी दी है हमें रक्षा करने के लिए। मगर हम सोचते नहीं भगवान आएंगे तभी हम मानेंगे, भगवान तो आ रहे हैं, आप उसको विभिन्न मान रहे हो, आप उसको अलग कर रहे हो अपने भक्तों से, ये आपका प्रॉब्लम है। तो हम कोई भी चीज अगर भगवान से अलग करते हैं तो वो क्या हो जाती है? माया। भगवान से कनेक्ट करते हैं तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं फिर हम देख नहीं पा रहे हैं। और भगवान ने तो रक्षा सिर्फ ऐसे नहीं कि मनुष्य की रक्षा कर रहे हैं, ये हाथी की भी रक्षा की, हाथी के शरीर में होने के बाद भी भगवान ने इसका उद्धार किया। तो ऐसा नहीं कि आपको मनुष्य शरीर में आने के बाद ही उद्धार होगा, आपके ये शरीर में भी उद्धार हो सकता है अगर हम भगवान की शरण लेंगे। सो भगवान अलग अलग मन्वंतर में आते हैं, यही अध्याय में बताया गया है, अलग अलग मन्वंतर में कौन से रूप में आते हैं और क्यों आते हैं? धर्म स्थापना, आया धर्म स्थापना करने के लिए। कौन सा धर्म? वापस भगवत धाम जाने का धर्म। कौन सा रास्ता स्थापित करने के लिए? कि ये रास्ते से ताकि आप वापस उनके पास जा सके, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, भगवान ने तो बहुत वर्षों पहले आ गए थे, प्लीज सरेंडर टू मी, डोंट वरी मां सूचा, बस मुझे समर्पण करो, मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा। अगर हम क्या, हम वो कनिष्ठ है या मत पता नहीं कौन से स्तर पे है, मगर एक एग्जाम्पल है जिसे हम समझ सकते हैं हमारा स्तर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई ये छठवें मंजिल पे जाके बालकनी साफ कर रहा है और करते करते पैर फिसल के आप एकदम लटक जाते हैं बालकनी के एज पे, कोने पे, और बस नीचे गिरने वाले रहेंगे जिससे आपका शरीर जाने वाला है। तो पुकार रहे, हे भगवान बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, पूरे मन से पुकारते हैं। भगवान आ जाते हैं, मां सूचा डोंट वरी, छोड़ो हाथ, नीचे से पकड़ लूंगा मैं तुम्हें, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। वो देखता है छह माला पक्का पकड़ लेगा, ठीक है, नहीं नहीं मां सूचा डोंट वरी, सर्वधन परित्यज्य मां एकम शरण, मुझे मेरा शरण लो, कम कम ना, पहले तुम पकड़ो फिर हाथ छोड़ूंगा, पहले ऊपर आओ मुझे पकड़ो फिर हाथ छोड़ूंगा, ये हमारा स्तर है समर्पण का। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं फिर? तो हमें हमारा जो फेथ है बढ़ाना पड़ेगा, और कैसे बढ़ेगा? श्रवण करके। कि श्रवण करने से हम समझेंगे कि ये जो पूरा संसार है, हमें लगता है कि हमारा जीवन कितना इंपॉर्टेंट है, हम कितना बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं, मगर हम एक छोटा सा एक स्पार्क है एक फायर में, हमारा कोई रोल नहीं है। वो एक पास्ट टाइम में प्रभुपाद जी और हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज यूएस में एक टेम्पल के प्रेसिडेंट है, और प्रभुपाद जी को लगता है कि बहुत ज्यादा ईगो आ गया, प्राइड आ गया कि मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं। तो प्रभुपाद जी कहते थे ये देखो, ये भौतिक सृष्टि में बहुत सारे ब्रह्मांड है, एक ही यूनिवर्स नहीं है, बुलबुले जैसे अनेक ब्रह्मांड है, उस एक ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मांड, एक हमारा ब्रह्मांड है जिसमें से अनेको प्लैनेट्स है, उसमें से हमारा एक छोटा सा प्लैनेट है जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, पृथ्वी में अनेकों कॉन्टिनेंट्स है, अनेकों देश है, उसमें से एक छोटा सा देश है जिसको कहते हैं अमेरिका, अमेरिका में इतने सारे स्टेट है, शिकागो एंड ये न्यूयॉर्क सब कुछ, उसमें से तुम्हारा एक टेम्पल है न्यूयॉर्क का, और न्यूयॉर्क के टेम्पल में होने के बाद एक रास्ता है जिसको एक स्ट्रीट कहते हैं, जहां पे एक छोटा सा मंदिर है, जहां पे एक छोटे से ऑफिस में एक छोटा सा व्यक्ति जो तुम हो, समझ रहे हो कि तुम बहुत बड़े आदमी हो। सो अगर हम जब ये पढ़ते हैं कि कितने मनवंतार है, कितना सारा बड़ा क्रिएशन है, उसमें हमारा रोल कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा रोल है, तो हमें एक बड़ा पर्सपेक्टिव हमारे दिमाग में आता है, और हमें समझ में आता है कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। ये शरीर क्षण भर का है, भाड़े का है, क्यों भाड़े का है? कि हमारा अधिकार नहीं है इसके ऊपर। जब बोला जाएगा कि जाओ छोड़ के, तब छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरा है तो नहीं छोड़ के जाऊंगा, जाना पड़ेगा। तो ये सब क्षण भर का है, मगर इसमें हम आसक्त रहते हैं और इसमें हम फंस जाते हैं, और ये नहीं समझ पाते कि हमारा जीवन और हायर पर्पस के लिए बना हुआ है। और यही चीज ये डेमीगॉड्स जो ये देवता है फंस गए थे, अरे क्या होगा, ये देवता ये असुर लोग पावरफुल हो गए हैं, अभी हमारा कौन उद्धार करेगा, त्राहीमाम, ये वर्ड है ना, त्राहीमाम, बचाओ 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 बचाओ। वो भूल गए कि ये संसार का तो प्रॉब्लम ही है प्रॉब्लम देना, ये संसार का स्वरूप है या इसका नेचर है दुखालय। तुम्हारा प्रॉब्लम यह है कि तुम सोच रहे हो कि यहां पे सुखालय आएगा, जैसे कि ग्रंथालय है और शौचालय है, तो शौचालय के अंदर कभी ग्रंथालय हो सकता है क्या? नहीं। तो वैसे दुखालय में आप सुखालय एक्सपेक्ट करोगे तो आपका प्रॉब्लम है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम देना ये इसका नियम है, अगर प्रॉब्लम नहीं दे ये संसार तो ये नेचर में फिर प्रॉब्लम है कि कुछ तो गलत सही नहीं हो रहा है। सो ये समझ नहीं पाए देवी देवता है, तो ब्रह्मा जी के पास गए जिन्होंने उनको एक अच्छा मार्गदर्शन दिया और बताया कि ये समय लाइक बहुत पावरफुल है, कोई आज हाथी के ऊपर है, माया एकदम हमारे फेवर में होती है ना, सब हमारी सबसे होता है, टॉप ऑफ द एलिफेंट, कभी हम हाथी के नीचे है, माया हम पे कभी कभी हावी हो जाती है, ये संसार में चलता रहता है, कभी कोई ऊपर कभी नीचे, और ये संसार में लोग विचलित नहीं होते। कौन लोग विचलित नहीं होते? जो इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं। एक फोटो था जिसमें एक पेंटिंग था जिसमें एक फ्रॉग मेंढक है और उसको सांप ने पकड़ लिया है और आधा खा चुका है, आधा खा चुका है, फिर भी खाते जा रहा है, फिर भी फ्रॉग के सामने एक मक्खी आती है और ये क्या करता है? वो मक्खी खाने में लग जाता है। हमारे भी यही है ना, हमारा शरीर समय जाते जा रहा है, हम बूढ़े होते जा रहे हैं फिर भी हैप्पी बर्थडे बना रहे हैं, ओहो, और भोग करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम तो काल सर्फ हम खा रहा है और रोज खा रहा है, फिर हम असलियत नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमने हमारे आंखों को ढक दिया है इंद्रिय भोग में और असलियत को पीछे डाल दिया है कि हम मरने वाले हैं, हमारा एक समय सीमित है और हमें इससे उभरना है, और हम इंद्रिय भोग में लग जाते हैं और क्या करते हैं, हम मौका देखते हैं जिससे इंद्रिय भोग कर सके। तो हमारा पूरा जीवन मौके से भरा है इंद्रिय भोग करने का, माया का तो वही काम है ना, मौका देने का, ये लो ये भोग कर वो भोग कर, बाद में वो त्रिशूल देती है वो अलग बात है। तो जब हम जवान रहते हैं, जितना भी मौका मिले सबको हम पकड़ लेते हैं, आहा ये भी ये भी ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। फिर थोड़े से उम्र बढ़ता है, फिर कहते हैं हाँ ये लास्ट टाइम लिया था ये मौका अच्छा नहीं है, हाँ ये अच्छा है, तो चूज करते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा और बूढ़े हो जाते हैं, फिर देखते हैं अरे यार ये तो मेरे बस का नहीं है, चलो एक ही ले लेता हूं इसमें से, कुछ कुछ मौकों का फायदा उठाते हैं। और फिर दो लोग एक नदी के किनारे बैठे हुए हैं जिसमें मौके अपॉर्चुनिटीज फ्लो हो रही है, और देखते हैं ये देख कितना अच्छा जा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हेल्पलेस है, बस फिर भी ढूंढ रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज फॉर सेंस एंजॉयमेंट। सो हमें ये जो अपॉर्चुनिटी दिया है मनुष्य शरीर इंद्रिय भोग के जगह पे, हमें कृष्ण को समझने के लिए अपनाना है, वरना पशु भी समान, हम पशु है और फिर हम पशु ही बनेंगे। देहात्म बुद्धि की वजह से क्या होगा, कोई कुत्ता बनेगा और कोई बिल्ली बनेगा, ये प्रभु जी तात्पर्य में कह रहे हैं। सो यहां पे हम देखते हैं कि असुर और देवताओं में लड़ाई हो रही है, तो दोनों का व्यू पॉइंट बहुत अलग है, असुर का और देवता का। असुर के लिए मतलब बस इंजॉय करना, गलत रास्ता है सही रास्ता कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस इंजॉय करना। देवता क्या, कृष्णा के हिसाब से इंजॉय करना। तो हमेशा इनके आपस में लड़ाई होती है, कभी असुर ऊपर रहते हैं राज में, कभी देवता रहते हैं। हम देखते हैं सीरियल में, जब बचपन में बहुत सारी सीरियल देखते रहेंगे, हमेशा लड़ते रहते हैं। और नारद मुनि आते हैं, जाओ भाई ब्रह्मा जी के पास जाओ, इनके पास जाओ, उनका निवारण करने के लिए। सो इस बार तो मगर देवता बहुत असली मुसीबत में फंस गए थे, क्योंकि इंदिरा ने गर्व के कारण अपमान कर दिया था किसका। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जो गालेन का जो लीला है वो गालेन दुर्वासा मुनि वैकुंठ लोक से लेके आए थे, ऐसा कुछ है क्या, राइट? हाँ राइट, ठीक है। सो दुर्वासा मुनि आए महाप्रसाद लेके, और इंदिरा को, हाय इंदिरा तुम कितना अच्छा रोल करते हो, इंदिरा को दे दिया। इंदिरा को लगा ये क्या है, तो रोज का बात है मेरे लिए माला पहनना, ये कौन सा बड़ा माला है। वो लेता है अपने हाथी को फना देता है, और हाथी तो पशु बुद्धि, उसको पता ठीक है कुछ काम का नहीं, नीचे उसको कुचल देता है। जैसे दुर्वासा मुनि ये देखता है कि कितना डिसरिस्पेक्टफुल है, तो उसके उद्धार के लिए उनको पाप देते हैं, उनको श्राप देते हैं। जब भी संत महात्मा आपको डांटते हैं या फटकारते हैं तो आपके उद्धार के लिए करते हैं, आपको नीचे दिखाने के लिए नहीं, ये समझना चाहिए हमें। सो उसको कर्ज कर देते हैं कि तुम सबका अभी पतन होगा, क्योंकि धन दूर मधा अंधा, कि धन के वजह से ऑपुलेंस की वजह से लोग अंधे हो जाते हैं, वही चीज इंदिरा के साथ हुआ। प्रभा जी कहते हैं कि डिवोटी को वैसा नहीं होना चाहिए, डिवोटी को सीखना चाहिए कि कैसे हमेशा विनम्र रहे और कैसे अच्छा व्यवहार करे साधुओं के साथ में, यही हम भक्ति में सीखते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है, ध्रुव महाराज है। जैसे कि इंदिरा को महाप्रसाद दिया गया था गालन के रूप में, ध्रुव महाराज के लिए भी एक एरोप्लेन आया था वैकुंठ लोक में जाने के लिए। ध्रुव महाराज नहीं गए, हाँ इतना साल तपस्या किया इसलिए मेरे लिए प्लेन आया है, हाँ रुको रुको मैं आता हूं, ऐसा नहीं कहते। वो क्या करते, प्रणाम करते हैं और उसकी प्रदीक्षिणा करते, उसका सर्कुमुलेशन करते हैं और कहते हैं कि थैंक यू, ऐसा नहीं कहते आई डिजर्व, कहते कि आपने प्रदान किया थैंक यू। और फिर जितने भी ऋषि मुनि आपस में रहते हैं उनको ये नहीं कहते, ये देख मेरे लिए प्लेन आया, तुम्हारे लिए प्लेन आया, देखो मेरे लिए प्लेन आया, ऐसे नहीं करते। वो कहते हैं प्लीज आपकी कृपा दीजिए ताकि मैं भक्ति में और आगे बढ़ू। उनकी कृपा लेने के बाद फिर जाते हैं प्लेन के ऊपर, मृत्यु के सर के ऊपर पैर रख के फिर चढ़ते हैं। और जब चढ़ते हैं तुमको अपनी मां का स्मरण होता है। वो ये नहीं कहते कि मैंने भक्ति की है तो अधिकार है कि मेरी मां को भी आना चाहिए, चलो मेरी मां को भी लेके चलो, वो ऐसा नहीं करते। बस सोचते हैं कि मेरे मां का क्या होगा और निर्भर रहते हैं कृष्णा के डिसीजन पे। और फिर वैसे जैसे ये सोचते हैं ध्रुव महाराज, वैसे ही वो देवता कहते हैं नंद और सनंदा जो कृष्णा के भक्त रहते हैं, घबराओ मत, आपकी मां के लिए अलग से प्लेन है, अब घबराओ मत, वो पीछे से आ रही है। हाँ तो ऐसा है, तो डिवोटी निर्भर रहता है अपने उद्धार के लिए भगवान पे। और जब हम गर्व हो जाते हैं रजगुण तमोगुण से, जैसे इंदिरा हो गया था, हम फिर ये जो कृपा है उससे बिरेफ्ट रहते हैं, हमें नहीं मिल पाता है। तो हमेशा हमें ये भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा अहंकार और ये ईर्ष्या से बचने के लिए, रजोगुण तमोगुण से, वरना बहुत मुश्किल है। देवा ऐसा गुण में मम माया दुरतया, बहुत मुश्किल है। माम एवा प्रबद्यन्ते मायाम तेरा तरम तरंती ते, माया मिताम तरंती ते, अगर आपको पार करना है तो मेरा शरण लेना पड़ेगा। सो यही चीज करते हैं। जब 12 में आ जाते हैं देवतागण जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी छोटे मोटे तो है नहीं, पावरफुल है, क्रिएशन किया है, ये जो देवताओं से तो ज्यादा पावरफुल है। वो कहते नहीं है बच्चागण टेंशन मत लो मैं हूं ना, वो ऐसा नहीं कहते। वो क्या कहते हैं, मुझे अभी कृष्णा का शरण लेने दो। और कृष्ण पे मेडिटेट करते हैं। हम देखते हैं मैनेजमेंट में जब लोग जाते हैं, ये देखिए ये मेरे को ऐसा कर रहा है, ये मुझे ऐसा कर रहा है, ये देखो मेरे इसमें टांग अड़ा रहा है, हाँ ऐसा कर रहा है, रुको रुको अभी फोन करता हूं, अभी बद सबक सिखाता हूं, अहंकार विमुदात्मा करता हम इति मन्यते, मैं करूंगा, मैं ठीक करूंगा। हम खुद का ठीक नहीं कर पा रहे, दूसरे का क्या ठीक करेंगे। सो मगर ब्रह्मा जी ने वो नहीं किया, भले ऊपर वाली पोजिशन में, उन्होंने क्या किया, कृष्ण का शरण लिया। और मार्गदर्शन कौन सा दिया, सतोगुण का शरण लो, नाउ इज द टाइम टू इन्वोक गुडनेस। वाई गुडनेस, क्योंकि गुडनेस से आप सीखेंगे कि कैसे भगवान पे निर्भर रहा जाए। रजोगुण तमोगुण में हम भगवान पे निर्भर रहना नहीं सीखते, हम भगवान को इस्तेमाल करना सीखते हैं, एक्सप्लॉइट करना सीखते हैं। पर सतोगुण में आप सीखते हो कैसे भगवान पे निर्भर रहा जाए, और वही चीज इन्हें वो कहते हैं करने के लिए। सो इसलिए हमें हमारा जो जीवन है, लाइफस्टाइल इज चूज करना पड़ेगा, हमें भगवान पे निर्भर रह के जीना है या जो इंडस्ट्री से आ रहा है उस पर निर्भर रह के जीना है। अभी कुछ भी आ गया तो हम बस प्रोडक्ट पे चले जाते हैं, भूख लगा बिस्किट खा लो, तो इंडस्ट्री कब तक चलेगा, जब तक खेती चलेगी, और खेती कब तक चलेगी, जब तक बारिश होगी, और बारिश क्यों होगी, जब आप भगवान के शरण लेंगे। मगर ये फैक्ट्री वाले बोल रहे हैं क्या, भगवान की कृपा से बिस्किट बना है, वो क्या कहते हैं ब्रिटानिया, वो कहते हैं सो कॉल्ड जो भी ब्रांड है, वो ये नहीं कहते हैं भगवान की कृपा। तो जितनी भी मॉडर्न सिविलाइजेशन है कलयुग में, ये जो इंडस्ट्री हमारा जो मेंटेलिटी है, ये हमें भगवान की चेतना से दूर कर रहा है और गॉडलीनेस गॉडलेसनेस फैला रहा है। एक तो ये भी कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है। हमें भी पता है कि प्रोडक्ट खा के कुछ स्वास्थ्य आने नहीं वाला है, कहीं भी लिखा नहीं है हेल्थ कितना है, सब ये लिखा है शुगर कितना है, फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, हेल्थ कितना है कोई नहीं देगा, क्योंकि हेल्थ दे नहीं सकते, पर फिर भी हम इसमें लगे हुए हैं और हमें लगता है कि ये जीवन शैली जी के हम खुश रहेंगे। कृष्णा वैसे जीवन शैली जी रहे हैं क्या, फैक्ट्री बना रहे हैं क्या, कृष्णा क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, नहीं मगर हम इंजीनियर बनेंगे, हम फैक्ट्री बनाएंगे, हम किसान नहीं बनेंगे, किसान बनना मतलब लोअर जाते हैं, ये मेंटेलिटी है। और कृष्णा तो हमारे ये है ग्वाले है, तो कृष्णा लोअर जात के हो गए क्या। सो ये मेंटेलिटी कैसे हमारे अंदर आ चुकी है, और ये सिविलाइजेशन वही फैला रहा है, इंजीनियर बने 12 घंटा रगड़ो इंजीनियर, ठीक है, और कुछ पल की खुशी के लिए फिर आप पूरा जीवन दे देते हो, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं होता है, दुखी प्राप्त होता है। कि यहां पे कह रहे ना, ब्रह्मा लोक में जाओ या नीचे में जाओ, हर जगह पे दुख ही दुख है, ये हमारा कल्पना है कि हमें सुख मिलेगा। सो हमें कृष्णा के सिस्टम पे डिपेंड होना है, सरल जीवन, जो भी सेमिनार होगा मैं कल सोमवार को, सरल जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग मतलब क्या, टू डिपेंड ऑन दी हायर सोर्स, निर्भर रहना कृष्णा के ऊपर। अभी हमारा लो थिंकिंग हो चुका है, हम निर्भर किस पे रह रहे हैं, अडानी के ऊपर, अडानी के स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे कुछ नहीं होगा और धम करके नीचे आ रहे सब लोग। हमें से भी कोई रहेगा, कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई ना कोई तो रहेगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही लोगों पर निर्भर रह रहे हैं जिनका कुछ अस्तित्व का ठिकाना नहीं है, और कृष्णा पर निर्भर नहीं रह रहे हैं, जिनका सिस्टम परफेक्ट है, हमेशा मदद करते हैं, हमेशा शेल्टर देते हैं। सो जब ये असुर अगर शक्तिशाली हो गए तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा पूरे सिस्टम पे, गलत काम करने के बाद भी आपको अच्छा नतीजा मिलेगा, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना फिर तो। तो कृष्णा का जो सिस्टम है वैसा नहीं है, कृष्णा का सिस्टम यह है कि आप मेरा शरण लो, और सिंपल है, शरण लेने से हमारा उद्धार हो जाएगा। हमारा उद्धार करने के लिए हमको कुछ ज्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। प्रभु जी एग्जाम्पल देते हैं यहां पे वृंदावन में, कि एक औरत थी जो सालों से रोज सवेरे उठ के मटके में पानी लेके यमुना जी से राधा दामोदर जी के लिए लाती थी, रोज बूढ़ी हो गई, ठंडी हो गई, गर्मी हो गई, फिर भी जाती थी। और एक दिन प्रभु जी देखा कि वो आई नहीं है, प्रभु जी कहे शी वेंट बैक टू गॉड हेड, वो वापस भगवतधाम गई है। क्यों, सिर्फ वो कृष्णा की सेवा कर रही है, ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश नहीं कर रही है, ज्यादा बड़ा पोस्ट लेने की कोशिश नहीं कर रही है, बस सेवा कर रही है। तो सिंपल है उद्धार करना। एक और पाश्चात्य माता है जो मैं कोई क्लास में सुना था, कि एक व्यक्ति था बिली, रोज भगवान के सामने जाता था, हे गॉड इट्स मी बिली, हे भगवान इधर, मैं इधर हूं बिली, ऐसा रोज करता था, जाके रोज जाता था, यही करता था। आखिर में जो मर रहा था तो भगवान आते हैं, हे बिली इट्स मी गॉड, मैं तुम्हारे सामने हूं। तो सरल है उद्धार करना, हम उसको कॉम्प्लिकेट बनाते हैं, क्योंकि हम शरण नहीं लेते हैं। हम शरण किसका लेते हैं, हमारे अहंकार का, हमारे अहंकार वाली बुद्धि का, हमारे अहंकार वाले मन का, और निर्मल चीज का हम शरण लेते हैं, जो कि भक्ति है, जिसमें समर्पण रहता है, जिसमें निर्भरता रहती है, और हमेशा हम फंसे रहते हैं। सो ब्रह्मा जी यहां पे क्या कह रहे हैं कि तुम अभी सत्वगुण का सहारा लो कि सत्वगुण से हमारा उद्धार होगा। मगर वो ये कहते हैं कि मेरा शरण नहीं, भगवान का शरण लो, क्योंकि ये पूरे संसार में हमेशा लड़ाई चलती रहती है, रजस तमस तथा, कभी सत्वगुण प्रोमिनेंट रहता है, कभी उसको तमोगुण ऊपर आ जाता है, कभी तमोगुण रहता है, सत्वगुण ऊपर आ जाता है, हमेशा आपस में लड़ाई होती रहती है। और ये संसार भी हम देखते हैं कि नीचे के लोग तमोगुण ज्यादा प्रोमिनेंट है, मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम जहां पे हम है रजोगुण ज्यादा प्रोमिनेंट है, ऊपर के उनमें सत्वगुण। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर के लोक में रजोगुण नहीं आता है, अगर ऐसा होता था तो इंदिरा जो ऊपर के लोक में रहता था वो कभी गर्वित नहीं होता था, कभी रजोगुण के प्रभाव नहीं आता था, वो आता है रजोगुण के प्रभाव में, कि हमेशा लड़ाई चलती रहेगी। दक्ष प्रजापति ईर्ष्या करते हैं किसके ऊपर, शिव जी के ऊपर। ये कौन सा गुण है, सत्वगुण है, तो लोअर गुण मोड्स है, तो ऊपर भी लोअर मोड्स हावी होते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा शरण नहीं, हम सबको भगवान के शरण लेना पड़ेगा, क्योंकि हम सब पे ये रजोगुण तमोगुण ऊपर नीचे हो रहा है, भारी पड़ रहा है, और इसका निवारण एक ही है, भगवान का शरण लेके। सो ये इतने गुण क्यों बनाए गए हैं, ये जितने भी जीव आत्मा है उनकी अलग जो इच्छाएं है उसको अकोमोडेट करने के लिए, किसी का तामसिक इच्छा है, किसी का राजसिक इच्छा है, और किसका सात्विक इच्छा है, ताकि हर एक को मौका मिले ये संसार में जीने का। और कृष्णा किसके इंचार्ज है, सत्वगुण के। सबने गुण अवतार हम सुने हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो कृष्णा मेंटेनेंस का देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा जी और शिव जी तमोगुण में है, नहीं, वो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं कृष्णा का, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं हमारे उद्धार के लिए। सो अगर हम कृष्णा का सिस्टम फॉलो करेंगे तो हम सत्वगुण में जाएंगे। मैं क्या सत्वगुण हमें मुक्ति देगा, क्योंकि सत्वगुण भी एक गुण में आता है, गुण मीन्स कंटेमिनेटेड, तो कैसे हम मुक्ति प्राप्त करेंगे, शुद्ध सत्व में जाके। शुद्ध सत्व में हम कैसे जाएंगे, तपस्या करके, ओनली बाय भक्ति, वासुदेव स्टेट, कि हम भक्ति करके ही शुद्ध सत्व में जा सकते हैं। तो कृष्णा सबका पालन कर रहे हैं, कहते ना इसके पहले का श्लोक था, कृष्ण सबका पालन कर रहे हैं, राजसिक है, तामसिक है, राजसिक तामसिक में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है सिस्टम का, और सत्व में क्या होता है, सिस्टम का पालन होता है। इसलिए खेती में डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, पालन होता है, ये रोड में, ये फैक्ट्री में, ये नाले में, इसमें क्या हो रहा है, सिस्टम का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बट फिर भी इनका पालन कर रहे हैं कृष्णा। क्यों, क्योंकि कृष्णा किसी से द्वेष नहीं करते, हर एक का पालन करते हैं, रजोगुण में हो या तमोगुण में भी हो। वह जो सत्वगुण में है उसके लिए स्पेशल फेवर है, उसके लिए स्पेशल फेवर है। क्या फेवर है, हम देखते हैं कि जो मेरा भक्ति करेगा, ये भजन तू मां भक्त्या मई ते तेषु चापे हम, मैं उसका फ्रेंड हूं जो मेरे भक्ति करेगा, और उसको क्या प्रदान किया जाएगा, उसको प्रदान किया जाएगा शुद्ध सत्व, जिससे कि वो मुक्ति के काबिल बने। सिर्फ सत्वगुण में रहने से हमारा उद्धार नहीं होगा, हमें सत्वगुण से ऊपर जाना पड़ेगा भक्ति के जरिए, और अगर हम इसका सहारा नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमें लग रहा रहेगा कि हम मुक्त है, जैसे बहुत सारे निर्विशेषवाद लोग सोचते हैं कि आई एम लिबरेटेड, इसका एक श्लोक है, मैं वही ढूंढ रहा हूं, या अरुह्य कृच्छ्रे न परम पदम तथा पतंती अधो नारदृत्त युष्मत अंग्रेयः, विमुक्त मानिनः, हमें लगता है कि हम विमुक्त है, वी आर फ्री, मगर नहीं, वी कैन नॉट बी फ्री अनलेस वी टेक शेल्टर ऑफ डिवोशनल सर्विस। हम मुक्त नहीं है जब तक हम कृष्णा की भक्ति का शरण नहीं लेंगे, हम हमेशा परेशान रहेंगे। तो वही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप जाओ और शरण लो भक्ति का, सत्वगुण तो एक जरिया है भक्ति को फेवरेबल बनाने का, मगर वो अल्टीमेटम नहीं है। मगर आप रजोगुण में भी जाके, रजोगुण से भी आप मुक्त हो सकते हो। कैसे, अजामिल, अजामिल कौन से गुण में था, रजो तमोगुण में था, ये मृगारी हंटर सबसे लोएस्ट मोड में था, फिर भक्ति का सहारा लेके वो मुक्त हो गया। तो ऐसा नहीं किसी सत्वगुण से हमारा उद्धार होगा, नहीं, अब लोगों में भी उद्धार हो जाएगा भक्ति के सहारे, कि भक्ति इज ट्रांसेंडेंटल टू थ्री गुनास, इसलिए हमें इसका सहारा लेना है। तो सत्वगुण क्या करता है, सत्वगुण कैसा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक रोप है एक कोने से दूसरे कोने से जाने के, तो हम ये भौतिक संसार में है, ये आध्यात्मिक संसार, अब इस पे चलना है, तो भक्ति एक मार्ग है जिससे आप भवसागर को पार कर सकते हो। तो शुरुआत में जो ये रास्ता है भक्ति का, बहुत कठिन है, कि नियम कानून है, तपस्या है, तो बहुत स्ट्रगल होता है, तो आप गिर भी सकते हो, होता है ना, कि लोगों का पतन हो जाता है भक्ति में, योग में आने के बाद भी पतन हो जाता है, तो क्या होगा जी? सतोगुण एक सेफ्टी नेट जैसा काम करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आप वापस वो रास्ते पे आ सकते हो और वापस भी चल सकते हो। और जब एक बार हम फिक्स हो जाएंगे कि बस कृष्णा ही हमारा एक शेल्टर है, तब जो ये रास्ता है एक रोप से बड़ा सा हाईवे हो जाएगा। जब बड़ा सा हाईवे होगा तो गिरने का क्या डर है? सतोगुण की क्या जरूरत है? यू आर जस्ट एब्जॉर्ब्ड इन भक्ति, यू आर स्थित, बोलते ना कौन सा स्टेज है वो, अधाव श्रद्धा साधु संघ अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या होता है? आफ्टर अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या होता है? निष्ठा। आप निष्ठ हो जाओगे कि भाई बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हरे कृष्ण चैंडिंग करने की जरूरत है। वही प्रभु जी यहां पे कह रहे हैं, चैंड हरे कृष्णा, दैट्स इट, दैट्स इट। अकेले रह के नहीं, अकेले रह के नहीं हो पाएगा, अकेले करके मन ही आपको परेशान करेगा। चैंड विद एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो हमारा जो संबंध है हमें भगवान से तो बनाना भी है, भक्तों से भी बनाना है। तो हम क्या करते हैं? खोट देखते हैं, ये देख कैसा है, ये देख कैसा है। अभी क्या क्या कहा गया यहां पे कलयुग में? कलयुग में सिर्फ खोट ही खोट है, ओशन ऑफ फॉल्ट्स। हम पढ़े ना ये निधि, निधि राजन की, इट्स ओशन ऑफ फॉल्ट्स, निधे राजन, इट्स ओशन ऑफ फॉल्ट्स। मगर एक महान गुना है, हरे कृष्णा कीर्तन। तो हमें किसी भी भक्त में खोटू दिखेगा दिखेगा, कलयुग के जीव है, मगर एक अगर गुण दिखता है हमें उस पर फोकस करना है, कौन सा? ही चैंडिंग हरे कृष्णा, ही चैंडिंग हरे कृष्णा। ये एक गुण देख लिया तो और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक मधुमक्खी होना पड़ेगा जो अच्छे गुण की तरफ आकर्षित होता है, जो कि हनी की तरफ आकर्षित होता है। हमें मक्खी नहीं होना पड़ेगा जो कचरा पेटी पे आकर्षित होता है। तो हमारे मन को ये दोष फॉल्ट फाइंडिंग से दूर करके अच्छे गुण पे फोकस करना पड़ेगा कि इसमें अच्छा कुछ तो है। वही तो साधु कहलाएगा कि बुरा देखने के बाद भी उसमें एक अच्छा गुण दिखता है। तो हमें वो मेंटेलिटी डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम साथ में रह पाएंगे, वरना नहीं रह पाएंगे साथ में। रोज फॉल्ट दिखेगा, ओशन ऑफ फॉल्ट है, कमी नहीं है, मगर एक गुण दिख गया कि स्टैंडिंग हरे कृष्णा, वो काफी है। और फिर साथ में रह के एक दूसरे की मदद करके हमें बैक टू गॉडहेड जाना है। कि बैक टू गॉडहेड में क्या होगा, आप और कृष्णा नहीं है और भक्त भी है, उधर भी ग्रुप है, चंद्रकला का ग्रुप, राधा रानी का ग्रुप। चंद्रकला का अलग मूड है, राधा रानी का हैवी मूड है, रफ मूड है, हर एक अपना मूड है। तो ऐसे नहीं कैसी कैसी कहते कुछ राधा रानी गुस्से वाली, ऐसा कहोगे वहां पर जाके? तो अगर भक्तों के संग में रह के अगर आप यहां पर नहीं सीख पाए साथ में रह के भक्ति करना, तो ऊपर क्या करोगे? निंदा ही करोगे। तो भक्तों से निंदा करके हम गुरु की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करने के बाद हम भगवान की निंदा करते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। सो निंदा करने की प्रवृत्ति से हमें मुक्त होना पड़ेगा और अच्छे गुण दिखने पड़ेंगे कि भक्ति तो कर रहा है, बस काफी है उतना। और पीसफुली सिंपली रह के हमें ये संसार पे बाहर निकलना है और कुछ नहीं करना है, बस जो आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है फिर भी ठीक है, आ रहा है ठीक है, शादी हुई फिर भी ठीक है, नहीं हुई फिर भी ठीक है, ब्रह्मचारी हूं फिर भी ठीक है, गृहस्थ हो फिर भी ठीक है, मगर कोई भी स्थिति में हूं भक्ति तो कर रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट है। क्या फायदा ब्रह्मचारी रहकर अगर मैं भक्ति नहीं कर रहा हूं तो? क्या फायदा सन्यासी रहकर अगर मैं लोगों का उद्धार नहीं कर रहा हूं भक्ति के जरिए तो? हमें क्या करना है? कोई भी स्थिति में हो, स्थिति में रहो और भक्ति करो, और ऐसी स्थिति में रहो जो आपके लिए फेवरेबल हो, ना कि अनफेवरेबल हो। ये गजेंद्र मोक्ष में सुनते हैं कि गजेंद्र का सिचुएशन कैसा था, पानी में था, जहां पे उसका स्थिति कमजोर था। तो जब वो उसका परपट लिख रहे थे प्रभुपाद जी को, तब प्रभुपाद जी को उनके एक शिष्य ने जो सन्यासी थे कुछ कुरियर भेजा था। क्या कुरियर भेजा था? सन्यास डंडा, कि मुझसे सन्यास नहीं हो पाएगा प्रभुपाद जी, सॉरी मैं वापस कर रहा हूं। और तब वो उसके बाद प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि माया शक्तिशाली है, और अब जब भक्त बनते हैं आप माया से लड़ाई शुरू कर देते हैं, इट्स अ वॉर ऑन माया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप हर गए तो, मगर लड़ना मत छोड़ो। आपकी स्थिति ब्रह्मचारी में अच्छी नहीं थी, सन्यासी में अच्छी नहीं थी, तो गृहस्थ में रहकर अपनी स्थिति स्ट्रांग करो, मगर लड़ना मत छोड़ो, चैंटिंग मत छोड़ो, भक्ति को मत छोड़ो। ये इंपॉर्टेंट है। और वही तरीके से हम वापस जा सकते हैं, भेदभाव करके छोटा बड़ा दिखा के हम वापस नहीं आते, खुद भी बाहर जा सकते हैं, न एक अच्छा संगठन बना सकते हैं। तो ये हमें सीखना पड़ेगा और खुद को डेडिकेट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। सो कोई प्रश्न? पांच मिनट है हमारे पास या कोई कमेंट, कि एक्चुअली बहुत कुछ है बोलने के लिए मगर समय इतना कम था उसमें कैसे तो उसको फिर स्किप करते करते एडजस्ट किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मेन चीज तो आ गया उसके अंदर। सो कोई क्वेश्चन या कमेंट? सो महाप्रसादे गोविंदे, ओके थैंक यू, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की, कंतराज भागवतम की, समस्त भक्त वृंद की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा।